श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 10। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदवी परिवर्तिते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, पर देखिए, वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहेगा, नहीं, मैं नहीं मानता कि सृष्टि के कार्यों में आप उदासीन रहते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था उदासीनवत, मैं नहीं मानता। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि भगवान के निर्देशन में निमित्त कारण के रूप में, यानी भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती है, जड़ प्रकृति उपादान कारण, उपादान कारण का मतलब होता है जिन वस्तुओं से कोई वस्तु बनती है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है, और जो कुंभकार है वो उसको बनाता है तो उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो निमित्त कारण हो गया बनाने वाला, और उपादान कारण हो गया वो वस्तु है जिससे वो बनती हैं। तो भगवान निमित्त कारण है, और उस निमित्त के कारण प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का सृजन करती है, जिसमें चर और अचर प्राणी इत्यादि रहते हैं। इसको शब्द यहां पे इंगित करता है सूयते, सूयते से प्रकटीकरण का शब्द अर्थ हो रहा है। भगवान ही इसके निर्देशक हैं। जैसे एक राजा हुए थे, उनका नाम था अम्बरीश, जो लगा भगवान के महान भक्त हुए थे, तो उनके निर्देशन में सारे मंत्री राजकाज करते थे और वो स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। राजकाज के प्रति वो उदासीन रहते थे, लेकिन होता सब कुछ उनके निर्देशन में है। यानी उनकी आसक्ति राजकाज में नहीं थी, कर्तव्य बुद्धि से केवल उदासीन रूप से आज्ञा दे देते थे और उसको उनके मंत्री किया करते थे। तो इस प्रकार से वो राजा होते हुए भी राज्य से पूरी तरह से अछूते थे, लेकिन कोई भी मंत्री अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि राजा सिंहासन पर जो आसीन है वो आज्ञा ना दे। उसी प्रकार से जड़ वस्तु, जड़ जो पदार्थ है, वो भगवान की अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं कर सकता। भगवान के अध्यक्षता और भगवान के होना, मतलब जब तक भगवान उसमें ना हो और भगवान अध्यक्षता से निर्देशन ना दें, भगवान निर्देश नहीं करें, तो प्रकृति कुछ कार्य नहीं कर सकती। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तात्पर्य कि मैं ये बात क्यों बोला, क्योंकि देखिए, एक बार कॉलेज में मुझे एक व्यक्ति मिला और बोला कि सब कुछ प्रकृति कर रही है और ये अपने आप चलायमान है। वो सो कॉल्ड बहुत बुद्धिमान थे हमारे कॉलेज में, लेकिन अद्भुत था। उस वक्त तो मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन जब मैंने भगवद गीता को खोला तो अद्भुत रूप से ये श्लोक खुल गया था। आज भी मुझे घटना याद है और मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि भगवान आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। अर्थात सीधे संलग्न नहीं होते, लेकिन उनकी ही इच्छा से जगत का सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है। आधार भूमि मतलब ग्राउंड, और किसे कहना चाहिए, क्योंकि भगवान से पहले ये जगत नहीं था, तो भगवान ही इस जगत के आधार है। किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन उससे निर्लिप्त रहते हैं एक बात, और दूसरी अपनी चिन्मय सत्ता में, आध्यात्मिक सत्ता में, स्पिरिचुअल सत्ता में स्थित रहते हैं, उनको इस भौतिक जगत के क्रियाओं से कोई सरोकार, डायरेक्ट सरोकार नहीं है। भगवद गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीवों का पिता हूं। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से, यानी कि देखने मात्र से, प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। कौन होते हैं? जीव। जब प्रलय होती है तो सारी जीवात्माएं भगवान गर्भोदकशय विष्णु के उसमें निवास करती हैं, और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बीत जाता है तो सभी जीवात्माएं कारणोदकशय विष्णु के शरीर में निवास करती हैं। और प्रलय के समय जो उनकी इच्छा थी, वही इच्छा, जो उनके कर्म थे, वही कर्म के अनुसार अगली सृष्टि जब होती है तब उन जीवात्माओं को ये मौका दिया जाता है कि उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो शरीर धारण करें, और फिर से कर्मों का चक्र चलता रहता है। काफ़ी गहरी बात है, क्योंकि अनादि काल से हम इस जगत में हैं, तो कितना संस्कार है किसी व्यक्ति के ऊपर ये कहना बड़ा मुश्किल है, और इसी के कारण हमारे स्वभाव बन गया है। लेकिन ये सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि भक्ति का संस्कार बहुत प्रबल है। एक नाम से ही कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए भक्ति का अगर हम आश्रय लेते हैं तो ये अनंत जन्मों के संस्कार ये समाप्त हो जाते हैं। तो यानी ये अनादि जरूर है, इनकी शुरुआत कब से है पता नहीं, लेकिन ये अनंत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए जगत में बंधे हुए हैं। अगर भक्ति करने का मौका भी मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये समाप्ति की शुरुआत है। हमारे जगत में हम फंसे हुए ये चक्र है, इसकी समाप्ति की शुरुआत है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करने लगते हैं और उनका नाम जप करने लगते हैं। तो भगवान उन जीवात्माओं की विगत इच्छा जो पिछले प्रलय के समय थी उसको याद रखते हैं, और उसके अनुसार उनको अलग अलग योनियों में स्थापित करवाते हैं प्रकृति के द्वारा। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। कोई जैसी जीवात्माएं इच्छा करती हैं अपने कर्मों के अनुसार, वैसे वैसे उनको शरीर प्राप्त हो जाते हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। ये उदाहरण नेक्स्ट है वो समझा देगा। भगवान जीवात्माओं को अपने दृष्टिपात से प्रकृति के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं, ये भी भगवान की अचिंत शक्ति है। और ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान की अचिंत शक्ति को जरूर स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम तर्क लगाते रहेंगे और भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान अपनी अचिंत शक्ति से केवल देखने मात्र से अनंत जीवों को प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर देते हैं, और फिर प्रकृति के गर्भ से अलग अलग योनियाँ, अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। इवोल्यूशन नहीं होता है, अलग अलग योनियाँ, अलग अलग शरीर एक साथ प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा और कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त मिल जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार और अपने धन के अनुसार एक होटल के विभिन्न प्रकार के रूमों में रह सकता है। हाँ, स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। फूल से ही सुगंध आती है, लेकिन सुगंध किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत दूर से प्रभावित कर रही है, मान लीजिए हवा बह के आ रही है, तो फूल का प्रभाव सुगंध के रूप में है और वो सुगंध स्पर्श कर रही है उस व्यक्ति को जो दूर है, फूल स्पर्श नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं फूल का कोई सरोकार नहीं है उस व्यक्ति से जो उस गंध को सूंघ रहा है, उसी प्रकार से भगवान का इस भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भगवान के बिना भौतिक प्रकृति शुभ शोभित नहीं हो सकती है, उसमें कुछ क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। बिना फूल के फूल की खुशबू नहीं हो सकती है, लेकिन फूल की खुशबू का क्या प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा इसका फूल से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान का इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो तो हमेशा आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ रहते हैं और सुख की लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि भगवान सोचने का प्रयास कर सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं कि वो दृष्टिपात से ही पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण सृष्टि स्थिति प्रलय अपनी इच्छा मात्र से कर देते हैं, वो भक्तों से निवेदन करते हैं या भक्तों से आशा करते हैं कि वो इस भक्ति का प्रचार करें। इस कार्य को भगवान नहीं करना चाहते स्वयं, इस कार्य के लिए वो अपने भक्तों को ही निमित्त बनाते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। उदाहरण के लिए जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ ये पड़े पड़े अपने आप रिकॉर्डिंग करके भेज नहीं सकता है, इसको चलाने वाला एक व्यक्ति है। मेरी जीभ भी मटेरियल है या कह सकते हैं जड़ है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने वाली आत्मा इसके पीछे है। उसी प्रकार से जितना भी जगत है ये क्रियाशील लगता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको चलाने वाले परमात्मा भगवान हैं और चलाने के बावजूद भी इससे पृथक रहते हैं, आसक्त नहीं होते। हरे कृष्णा।